लाइफ वर्थ लिविंग, दैट वॉज अबू बकर्स। आप और मैं भी इस दुनिया से जब चले जाएंगे ना, तो देखिएगा कि हमारी यही अच्छी बुरी बातें ही याद रह जाएंगी लोगों को कि करके क्या गए थे, और अपने लिए यही गोल बनाएं कैसी ज़िंदगी बसर करनी है कि जो हमारे लिए बेहतरीन हो। आप लोग अपने नोट्स के लिए रेडी रहें, बिल्कुल खामोशी होगी तो मैं बोलती हूँ, इसलिए कि वो फिर बाद में जब लोग सुनेंगे तो आपका भी सदका जारी होगा बीच में। किस चीज़ का? ये आवाज़ों का है। तो आज थोड़ी सी बातें अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक की, इंशाल्लाह ताला ये रिफ़्रेशिंग टाइम है अब आपका। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर अशरा मुबशरा। हमने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो के बारे में पढ़ा, लेकिन हकीकत है कि हक़ तो ये था कि हक़ अदा ना हुआ। हमने अबू बकर सिद्दीक के बारे में जो कुछ भी कहा वो अल्हम्दुलिल्लाह सुना कहा, वो सच था, लेकिन मैं ये बात कह दूं कि ये सब काफ़ी नहीं था। अबू बकर की ज़िंदगी पे इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो एक भरपूर कम अज़ कम एक हफ़्ते का सेमिनार रखेंगे। आज उम्मत को ऐसे किरदारों से मिलाने की ज़रूरत है। इस वक्त हम अपने वक्त की नौइयत से इन सारे असहाब का जिक्र इस सोच के साथ भी कर रहे हैं और सुन रहे हैं कि चलिए कुछ हलचल तो पैदा हो ना। तो आज जो शख्सियत आपके मेरे सामने है वो दूसरे खलीफ़ा रसूल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हो हैं। यकीन करें ये वो लोग हैं कि जिनका नाम लेना तो दिल मोहब्बत से भर जाता है, जैसे चीनी की चीनी भरा चम्मच मुंह में डाले ना तो मुंह मिठास से भरता है, शहद की चम्मच डाले ना तो मुंह मीठा होता है। इसी तरह ये शख्सियात आज तक दिलों में रहती हैं। ना इनके कपड़े लोगों को याद है, ना इनकी गाड़ियाँ याद है, ना इनके घर याद हैं, किरदार रह जाता है बाकी। तो जिस चीज़ पे लोग मुझे और आपको बाद में याद करें वो हमारा किरदार हो। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो उन अशरा मुबशरा में से हैं कि जिनको ज़ुबान नबूवत ने ये खुशखबरी दी थी कि उमर फिल जन्ना। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इनको मिला। आप इनके पॉइंट्स लिखते जाइए, फिर बात के बाकी स्टोरीज एंड पे कर लेंगे। सबसे पहला अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इनको मिला, हालांकि हज़रत अबू बकर भी थे, लेकिन इनके दौर में ये इस्तलाह शुरू हुई। मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। आपके ज़माने खिलाफत में बहुत सी फतूहात हुई, यानी अगर आप कहें ना कि 10 थिंग्स अबाउट उमर तो ये चीज़ें उसमें आ जाएंगी। अल्लाह ने ईरान, मिस्र, शाम और फ़लस्तीन के बड़े बड़े इलाके उमर फ़ारूक के दौर में मुसलमानों के हाथ में दिए, और उमर वो थे जिनको शहादत का मुकाम और मर्तबा मिला, और उमर वो थे जो नंगी तलवार थे, और उमर वो थे कि जिनके इस्लाम कबूल करने से इस्लाम बंद दरवाज़ों से खुले मैदानों में आ गया, और उमर वो थे जिनकी ज़िंदगी इस बात की दलील थी कि बुराइयों में, गुनाहों में लतपत बंदे को भी अल्लाह अपने दीन के लिए चुन सकता है। हज़रत उमर के इब्तदाई हालात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। इनके वालिद जो ख़त्ताब थे उनका इंतकाल हो चुका था इनके मुसलमान होने से पहले, लेकिन इसके अलावा हज़रत उमर जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 13 साल छोटे थे, और जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनकी उम्र तकरीबन 23 साल के करीब थी। नाम उमर था, अबू खफ्स हफ्सा के बाप थे ना, हज़रत हफ्सा जो उम्महातुल मोमिनीन में थी उनके नाम से इनकी कुनियत अबू खफ्स थी। नसब इनका उमर बिन खत्ताब बिन नुफैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा, ऊपर से होते होते अल कुरैशी थे। माँ का नाम हशमा बिनते हाशिम था। नबी सल्लम की पैदाइश से तकरीबन 13 साल बाद मक्का में पैदा हुए। इनको अरब जाहिलियत के दौर में सफीरुल कुरैश कहा जाता था, एम्बेसडर ऑफ कुरैश। उस दौर में कोई वाज़ेह हुकूमत तो नहीं थी मुल्कों की सूरत में कि उस मुल्क का एम्बेसडर या उसका, तो अरबों ने कबाइल को मुख्तलिफ काम बांटे हुए थे। हज़रत उमर अदी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। उस कबीले के ज़िम्मे दो बड़े बड़े काम थे, उनमें एक क्या था, दूसरे कबीलों तक पैगाम पहुंचाना, सफ़ीर बनना। हज़रत उमर बहुत वोकल क्लैरिटी से बात करने वाले, स्पीच इनकी बहुत खूबसूरत थी। ये उन चंद उंगलियों पे गिने हुए नामों में से एक नाम था जिनको पढ़ना लिखना आता था। इस बुनियाद पे अरब लोग इनको बाहर भेजा करते थे, कह लीजिए कि कोऑर्डिनेशन करते थे, और इनके जिम्मे ये काम था। तिजारत पेशा थे, और इतनी तिजारत इनकी बाहर हुई जिसको आज की ज़ुबान में आप एक लफ्ज़ से समझ जाएंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। मुल्क शाम, रोम, फारस उस दौर की सुपर पावर्स थी। तिजारत की वजह से उधर गए, इतनी तरक्की हुई कि उन मुल्कों में भी इनका असरो रसूख हो गया था। और 6 नबवी में मुसलमान होते हैं, नबुवत के 6ठे साल, 23 साल की उम्र में मुसलमान होते हैं, और आपसे पहले 39 लोग मुसलमान हो चुके थे। तो इनका नंबर कौन सा हुआ? 40th, 40वें नंबर के मुसलमान थे। इस्लाम से सख्त बुग़्ज़ और इनाद था, तशद्दुद बरतते थे। इनके कबूले इस्लाम का वाक्य आप में कोई एक अगर ऐसा हो जिसको नहीं आता तो मैं सुना दूं, और मेरा यकीन है कि आपको सबको आता है। हज़रत उमर का नाम लेकर कहें तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात सच है, आज के दौर के नाते से बिगड़े हुए नौजवान थे। शराब, कबाब, औरत की मोहब्बत भी थी, बुत परस्ती भी थी। अपना बुत खुद बनाकर उसको पूजते थे। कि वाकई में पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी कि आप कभी किसी को फतवा ना देके आया करें कि ये नहीं सुधरेगा। इतना बिगड़ा हुआ शख्स जितना उम्र थे अगर, लेकिन इस्लाम से पहले थे। देखिए, शराब सहाबा से इस्लाम से पहले बड़े बड़े गुनाह में थे, तभी तो फिर पलटे। हाँ, ये याद रखिए कि मुसलमान होने के बाद ऐसी कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में नहीं थी। जब इन्होंने नबी सल्लम की तालीमात के बारे में सुना तो इंतहाई बुग़ज़ था, क्योंकि वो सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ थे। लोग हज़रत उमर को जैसे कह लीजिए कि एक टोकन के तौर पर यूज़ करते थे। जहाँ लड़ाई करानी होती, जहाँ जाकर बात करानी होती, उसके ख़िलाफ़ करानी होती, तो लोग उमर को यूज़ करते थे। और ऐसा ही उमर जब नबी सल्लम की फैलाई हुई बातें और तालीमात की बातें रोज़ सुने, थक गए। कहने लगे, अब मैं इसको ख़त्म करूँगा, ये हर वक्त अब हर घर में ये मसला है। और जा रहे थे तो रास्ते में किसी ने कहा कि तुम्हारी तो अपने भाई भाई बहन और बहनोई का हाल जाके पूछो, वो मुसलमान हो गया। अच्छा, पहले फिर उनको ख़त्म कर आता हूँ। और जब वहाँ गए और वो सारा माहौल कि वहाँ आपके बहनोई, और इंशाल्लाह इसी सीरीज़ में हम इनके बहनोई का भी पढ़ेंगे। ये भी नोट कर लें कि हज़रत उमर ख़ुद भी अशरे मुबशरा में, और इनके ब्रदर इन लॉ भी अशरे मुबशरा में। सईद उनका नाम है। 9th नंबर पे हम इंशाल्लाह स्टोरी इनकी पढ़ेंगे। और फिर वहाँ बहन को मारा, उसका खून लब देखा तो रो पड़े और दिल नरम हुआ। सूरत तौहा की आयतों को सुनकर दिल पिघला। इससे पहले सूरत अल हाका की आयतें जो छुप के काबा के पर्दे में छुप कर सुन रहे थे नबी की ज़ुबान से, तो दिल में इस्लाम आ चुका था। वो आप जानते हैं उस आयतों का वाक्या भी आपने सुना ही होगा कि अल्लाह के नबी की बातें सुन के कहा, ये तो शख्स शायर होगा, इतना प्यारा कलाम। आयत आ गई, वमा हुआ बिकौली शायरिन, कहा ये तो इसको दिल की बात पता चल गई, ये काहिन है। कहा वला बिकौली काहिन, कहा ये काहिन है, ये शायर नहीं, ये जादूगर होगा। ये दिल की कलियाँ खिलती हैं, याद रखिए, कभी किसी से मायूस ना हो। आपकी दोस्तें, आपके बच्चे, आपके घर वाले बज़ाहर आपकी इस चीज़ को ना भी कान धरें, उनके दिल में कुछ ना कुछ पड़ता है। हज़रत उमर के दिल में पड़ा था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो मुआशरे के एक चीदा चीदा लोगों में से थे। किस तरीके से वो आगे बढ़ते थे, और जब वाकई दिल में ईमान आया, इस्लाम कबूल करने की नीयत से नबी सल्लम की तरफ गए, तो बाहर से खबर फैल गई, अल्लाह के नबी उमर आ रहा है नंगी तलवार लिए हुए। का कोई बात नहीं, आने दो। हमज़ा के साथ दोस्ती भी थी, और हमज़ा भी बड़े स्ट्रांग थे। कहने लगे, कोई गलत सलत काम करेगा तो मैं इसको निपट लूँगा। और वहाँ गए, अल्लाह के नबी ने इनको देखा, इनके कंधे पे हाथ रख के कहे, ख़त्ताब के बेटे, किस इरादे से आया? कहने लगे, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मक्का में अल्लाह अकबर की आवाज़ों से गूंज पैदा हो गई थी। बाकी लोगों की तरह अल्लाह के नबी ने उमर को भी मशवरा दिया कि उमर, अभी अपने इस्लाम को छुपा लेना। क्यों अल्लाह के नबी? पहले दिन सवाल किया, अल्लाह के नबी आप सच्चे नहीं, इस्लाम सच्चा नहीं है, फिर हम क्यों छुपे? बाहर निकलने से पहले सोचते हैं, मेरे मुसलमान होने का सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा? अबू जहल दोस्त भी था इनका, बेली यार जिसको कहते हैं ना। कहने लगे, हो ना उसको होगा। सीधा उसके घर के जाकर टिक टिक तलवार से उसके घर को, दरवाजे को बजाया। वो बाहर निकल, ओ इब्ने खत्ताब क्या हाल है, हाउ आर यू डूइंग, का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। इतना सटपटाया अबू जहल के दरवाज़ा बंद करके अंदर छुप गया। हज़रत उमर नहीं डरते थे, उससे पहले लोग दारे अरकम में जमा होकर छुप के इबादत भी करते थे, नमाज पढ़ते थे। उमर वो पहले शख्स हैं जिन्होंने खाना काबा में जाके बरमला जाकर नमाज पढ़ी, और सब ने हिजरत की तो छुप के की मदीना में। उमर वाज़ द फर्स्ट मैन, ओनली मैन बल्कि कह लीजिए, कि जब मदीना हिजरत का वक्त आया और बाकी लोगों की तरह उमर ने भी की, बाकी छुप के जा रहे हैं, उमर नहीं गए, गुसल किया, खाना काबा में आए, तवाफ किया, हजरे अस्वद के पास बैठे, जो भी थे, फिर वहां खड़े होकर आवाज लगाई, या अहलल कुरैश इधर आओ, तुम में से किसको मेरे इस मुल्क को छोड़ जाने का ज्यादा दुख होगा, फलां जगह पे आ जाए। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी माँ तुम्हें रोए, तुम्हारी बीवी रांड हो जाए, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाए, तो मेरे से मिल लो। मैं तुम सबको बता रहा हूं कि मैं मक्का छोड़ के मदीना जा रहा हूं हिजरत करने, जिसको मेरे पीछे आना आ जाए। किसी एक को जरूरत नहीं मिली। मैं सुबह ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि इवन अबू बकर, कल पढ़ा ना थोड़ा सा, जिसके ऊपर कुरान में आयतें उतर गईं कि वो दो में का दूसरा, सूरह तौबा में आयतें हैं, सूरह अनफाल में जिक्र है उनका कि वो आपके असहाबे गार थे और कैसे अल्लाह ने उनको, इवन अबू बकर नबी सल्लम के साथ छुपते छुपाते हिजरत कर रहे हैं, और इवन नबी सल्लम छुपते हुए कर रहे हैं, लेकिन उमर ने अपनी हिजरत खुल के की। आज आप में से भी कुछ के अंदर अबू बकर अली खूबियाँ होंगी, कुछ में उमर अली, दुआ कीजिए ये इस्लाम के लिए लग जाएं। बुरा कुछ भी नहीं होता, एवरी थिंग इज़ गुड, सिर्फ यह है कि आप उसका इस्तेमाल क्या करते हैं। छुरी छुरी है, फ्रूट काट लीजिए तो नेमत है, किसी का हाथ कट जाए तो वो जहमत है। तो उमर के अंदर जुरत बहुत थी, और इनकी जुरत की वजह से कोई इनके सामने नहीं आता था। औरतें अपने बच्चों को डराती थी, सो जाओ नहीं तो उमर को बताऊंगी। हमारे यहाँ क्या कहती हैं बेचारियाँ, यानी उमर के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता बदलता है। शायद हमें तो दो गलियां छोड़ के सलाम करने आता होगा, क्योंकि जुरत पैदा कीजिए। और उमर की पर्सनैलिटी क्या क्या कहना, अल्लाह के नबी के दो कमेंट नोट कर ले। आपने फरमाया हर उम्मत में एक साहिब इल्हाम होता है, इल्हाम मीन जिसको बात सूझ जाती है, आज वही तो नहीं आ सकती ना क्योंकि वह नबूवत के साथ खास थी, इल्हाम हो जाता है। लोग कहते हैं आपको कैसे पहले पता चल गया, अल्लाह की देन होती है, सिक्स सेंस कह लें आप उसको, उमर साहिब इल्हाम थे। और दूसरी बात आपने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। यहाँ फिर बड़ी लंबी बहस चलती है, लेकिन एक दो जुमला आपकी सोच के लिए दे दूं कि आपने कहा मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, लेकिन एक्चुअली खलीफा थे तो कौन थे, अबू बकर। फ़र्क समझिए, मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको इधर से मिलेंगी, वल्लाही खलीफा में और नबी में एक चीज़ का फ़र्क होता है, और वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। लीडर्स भी दो किस्म के होते हैं, कुछ अगर उमर की तरह सूझबूझ रखने वाले हैं जिनको हालात पे नब्ज़ है, हज़रत उमर की ज़िंदगी के वाक़ तो आप पढ़िए, मदीना में बैठे हुए हैं और अपनी फ़ौज के कमांडर को शाम में उनकी आवाज़ अल्लाह पहुँचा देता है। अल्लाह ने ऐसे, वो सारिया सारिया लीडर था, उसको हज़रत उमर की आवाज़ सुना दी जैसे उमर के पास बैठे हुए हैं, हालांकि कोई आवाज़ सिस्टम नहीं था। या सारिया इला जबल, या सारिया, इन्होंने यहाँ बैठ कर देख लिया कि मेरे भेजे हुए लोग गलती कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत जगह पर लोगों को बिठा रहे हैं, मसलन लोकेशंस गलत है, तो यहाँ से आवाज़ दी, और सारिया के कानों को अल्लाह ने वो आवाज़ सुना दी कि अमीरुल मोमिनीन मदीना में बैठकर कह रहे हैं कि ये सारिया आप ज़रा जगह बदल लीजिए, और जब जगह बदली फतह हो गई। क्या बात करने की। और अगर कभी अब खालिद बिन वलीद के साथ उमर के मामला सुने, दो तलवारें थी, दो नंगी तलवार, सारी ज़िंदगी इन दो का मुकाबला चलता रहा, वो भी वोकल थे ये भी वोकल थे, वो भी बोल्ड थे ये भी बोल्ड थे, वो भी बहादुर थे ये भी बहादुर थे, लेकिन अल्लाह के नबी की खूबी ही ये थी कि आपने दो टैलेंटेड लोगों को आपस में नहीं लड़ने दिया। याद रखिए, ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो अल्लाह आपको दे दे, मुख्तलिफ तरह के लोगों को कैसे जमाना है, किसको किधर रखना है, किसको किधर नहीं रखना, और ये चीज़ अल्लाह ने नबी सल्लम के थ्रू हज़रत उमर को भी दे दी थी। और याद रखिए कि उमर फारूक अगर कुफर में सख्त थे ना, तो इस्लाम में भी सख्त हो गए। अगर पहले गलत चीज़ों में पड़े हुए थे ना, तो फिर जब अच्छी चीज़ों में पड़े तो अल्लाह के नबी की वो बात सच हो गई कि तुम में जो कुफर में सख्त होगा वो इस्लाम में भी सख्त होगा। और फिर ये भी बात याद रखिए कि हज़रत उमर की सारी खूबियाँ, जो उनकी बोल्डनेस स्टबननेस थी, वो इस्लाम पे लग गई। जैसे लोहा इस बिल्डिंग में लगा हुआ है ना, बस लोगों में तबीयतन सख्ती होती, क्रश करख्त होते हैं, अल्लाह से कि अल्लाह ये करख्तगी इस्लाम पे लगा दे। कुछ में फितरी नरमी होती है कि अल्लाह ये सीमट बना के मुझे दो ईंटों को बीच में जोड़ने वाला बना दे। आपके बच्चों में भी कमी बेशियाँ होंगी, आप उनकी भी इसी तरह नोट करें कि अल्लाह इसकी खूबी इस्लाम में लगा दे। ये ना कि अब लोहा शीशा नहीं बन सकता, अगर आपकी तबीयत में नरमी अब सख्त नहीं हो सकता, तो फिर ये कि अल्लाह इस नरमी को ज़रा सा कहीं अच्छी जगह पर लगा ले। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो वो हाकिम थे अपने दौर के खलीफा के, काफ दुश्मन बादशाह उनसे 1 मील दूर होते, 1 महीने की मुसाफत पे होते थे और डरने लग जाते थे। शाम और फारस और इर्द गिर्द के लोग जो थे वो उमर का नाम सुन के कांपते थे। एक शख्स एक बार इनकी तारीफ़ें और शोहरत सुन के आया कि हम देखें तो सही उमर कौन है। और जब आए ढूंढते ढांढते देखा एक शख्स मस्जिद नबी के बाहर सो रहा है, इतनी बे कहना चाहिए कि मज़े की नींद, कि आधा धड़ धूप में आ चुके हैं, उनको होश ही नहीं। पूछा ये कौन है? कहा ये उमर है, तुम्हें नहीं पता? कहा उमर है, ये उमर है। फिर उस शख्स ने कहा ये वो उमर है जिसने कैसरो किसरा की रातों की नींदें उड़ाई हुई हैं। और कहने लगा ये उमर तू वो शख्स है जिसने अदल कायम किया, इसीलिए तो सुकून से सो रहा है। और हज़रत उमर की खूबी सारी जंगों में इनको शिरकत का मौका मिला। नबी सल्लम की ज़िंदगी की हर जंग में साथ भी रहे, साबित कदम रहे। आज हम एक काम कर लें दूसरा छोड़ देते हैं। और इनको एक एजाज़ मिला जंगे उहद में, अबू सुफियान जो कुफर की तरफ आए थे उनके साथ कल मुकालमा हुआ, याद है आपको वाक्य सुना होगा, हुबल के नाम पे हज़रत उमर ही वहाँ बोले थे। और हज़रत उमर वो थे जिनकी राय गज़वे बदर के कैदियों के हक में वही थी जो अल्लाह की राय थी, मुवाफ़कत। और उमर वो थे, कहते हैं कुरान में तीन तो मुझे ज़ुबानी याद है, इससे भी ज़्यादा, कहीं तीन कहीं आठ कहीं नौ तक आते हैं। ये नहीं कहते कि मैं रब ने मतलब मैं ये नहीं कहते कि मतलब जुमला उनका बड़ा खूबसूरत है मुवाफ़कत का। देखिए बड़े बंदे को आप कह देना जी आपने मेरी मुवाफ़कत की तो ये बुरा लगता है। बच्चा पहले कोई बात कर दे, बाप बात में कह दे, तो जाहरी बात है ये वो बात हुई ना जो बच्चे ने कह दी। तो उमर ये नहीं कहते मैंने कहा और अल्लाह ने किया, कहते हैं रब ने कहा और मैंने मुवाफ़कत की। कुरान की तीन आयतें तो मैं आपको लिखा दूं और बाकी आप बाद में नोट कर लें, जो उमर के कहने पे उतरी। इधर उमर के दिल में ख्याल आता था और उधर आसमान से आती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम थे, लोग आते थे जाते थे, कबाइल के लोग, आपकी बीवियों के हुजरे वहीं थे, औरतों पे नज़र पड़ती थी। उमर को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि नबी की बीवियों को कोई देखे, दिल में कुढ़ते थे। अल्लाह ने पर्दे हिजाब की आयतें उतार दी, सूरह अहज़ाब में से पढ़ लीजिए। आज उमर के मांगे हुए पर्दे क्या कहते थे? अल्लाह बयानन शाफियन, बयानन शराब तब तक जब तक पूरी हराम ना हो गई। उमर अल्लाह से यही कहते रहे अल्लाह इसको हराम कर दे। बयानन शाफियन, फिर उतर गया एक हुक्म, कहा नहीं अल्लाह और। 3 स्टेप में नाजिल हुई ना शराब की हुरमत, बल्कि देखे जाए तो 4 हैं। ये उमर के मशवरे थे। आज हमने उमर के मांगे हुए उन पर्दों के साथ क्या किया? और आज का मुसलमान 4 टके कमाने के लिए उसी शराब को बेचने लग जाए तो फिर वो उमर तो नहीं हुआ ना। बात यह है, सीधी सी बात यह है कि शख्सियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उमर की खिदमात को अगर देखिए, कुरान मजीद का एक के ऊपर उमर का एक बहुत बड़ा एहसान है। इनके दौर में सबसे पहले कुरान को जमा करने का काम किया गया, और हज़रत उमर ने कुरान की तालीम और आयमाए कराम जो मस्जिदों के इमाम थे उनके वजीफ़े मुकर्रर किए, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात होती हैं, जब उनमें पड़ जाते हैं तो दीन को छोड़ देते हैं। फिर हदीस का काम किया, हज़रत उमर ने हदीस के लिखने और जमा करने में बहुत बड़े कारनामे किए, ये तो इंशाल्लाह हम तवील जब बात करेंगे तो पढ़ेंगे। और हज़रत उमर नबी की हदीस सुनकर फिर उसके ऊपर किसी की बात नहीं सुनते थे। फिर हज़रत उमर का एक तीसरा कारनामा हक़ की बुलंदी, ओलाए हक कलिमतुल्ला, अल्लाह का कलमा बुलंद इन्होंने किया। और जब इन्होंने कर दिया तो हो गया। और इनको फ़ारूक का लकब क्यों मिला? हक और बातिल में फ़र्क करने वाले। फिर इसी तरह नमाज, रमज़ान में तरावी की जमात कायम करना और जो उसकी शक्ल है, ये उमर के दौर से ये चीज़ शुरू हुई। हज़रत अली इनके बारे में कहते थे कि अल्लाह उमर की कब्र को रोशन करे, उन्होंने हमारी मस्जिदों को रोशन कर दिया। जैसे आजकल भी हमारी मस्जिदें रमज़ान में रोशन होती है। अज़ान उमर की तजवीज़ से ये अज़ान हुई थी, अल्लाह ने इनको ख्वाब में सुनाई थी। तो जब वो अज़ान सुनी तो फिर वही साबित हो गई। फिर ज़कात के मामले में हज़रत उमर का कारनामा क्या है? ज़कात की आमदनी को बैतुल माल में जमा करना और वहाँ से देना, ये निज़ाम हज़रत उमर के दौर में हुआ। और हज के नाते से याद रखिए कि अबू बकर ही के दौर में, जबकि इनसे पहले 2 साल, इनको हज का अमीर बना के अबू बकर भेजा करते थे। अपने दौरे खिलाफत में भी अमीर हज बनकर जाते रहे, और जिहाद और उसकी खिदमात तो इनकी बहुत सारी हैं। उस पे तो आज आपका वेस्ट कहता है। आप जाके खोलिए, आप बुक्स खोल के देखिए, फारूक के नाम पे इंग्लिश बुक्स, नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस की लिखी हुई बुक्स हैं। आज ब्रिटिश, बरतानिया का, इंग्लैंड कह लीजिए, जो सोशल वेलफेयर सिस्टम है, सभी को पता है, इन मुल्कों से मेरा हाल है उधर ज़्यादा है, जो मैंने सुना है। बहरहाल हज़रत उमर के बेस्ड है। वो खुद इकरार करते हैं कि हमने सारा सोशल सेटअप उमर से लिया। वजीफे मुकरर हुए, बेवाओं को मिला, बच्चों को मिला, औरतों को वजीफा देते थे। घर से गए तो रोने की आवाज़ें आने लगी हैं, बच्चा रो रहा है, रो रहा है। पूछा क्या हुआ? कहा मैंने इसका दूध छुड़ा दिया। औरत नहीं पहचान सकी कौन है बाहर जिससे बात कर रही हूँ। कहा तूने इस मासूम का दूध क्यों छुड़ाया? कहेंगी तुम्हें नहीं पता वो हमारे खलीफा ने वजीफा मुकर्रर किया कि जूं ही बच्चा माँ का दूध छोड़ेगा उसको इतने पैसे बैतुल माल से मिलेंगे, तो मैं गरीब औरत हूँ, मैं इसका दूध छुड़ा रही हूँ। अल्लाह अकबर। उमर गए वापस, जाकर फैसला सुना दिया कि 2 साल तक माँ को दूध पिलाना है। उमर इस तरह के हुक्मरान थे कि उनकी महफिल में खड़ी एक औरत उन पे उठ के तनकीद करे, उमर उसकी बात पे अपनी बात वापस ले आते थे। आपने देखा कि लोग बड़े बड़े हक मेहर बांधने लगे ऐसी इज्जत के नाम पे, खड़े होके इधर आके ऐलान कर दिया जी 500 दिरहम से ज्यादा हक मेहर नहीं होगा। इधर से उधर के भी वो दरवाजे तक नहीं गए तो एक औरत आ गई, कहने लगी उमर इधर तो आइए। जब अल्लाह ने कह दिया कि खजाना भी दिया हो तो वापस नहीं ले सकते तुम छोड़ने की सूरत में, आप उसको क्यों कह रहे हैं? और 500 दिरहम किंतार तो नहीं होता? फौरन कहा दोबारा मजमा जमा करो। खड़े होके इधर आके कहा अभी उमर ने एक कानून बनाया था, उसको वापस लेता हूँ, जितने मर्जी हक मेर दे दो। और फिर कहने लगे उमर जीत हार गया, एक औरत जीत गई। एक रिवायत में आता है कि सारे ही लोग ज्यादा फहम रखते हैं उमर से ज्यादा, इतना को बड़ा कोई हो सकता है? रातों को जाकर अपने कौम का हाल पूछा करते थे। उमर की गर्दन पे, कमर पे बोरियों के निशान थे। उस बूढ़ी औरत जो नबीना थी उसके घर की सफाई करते थे, जो अपनी ज़िंदगी में अबू बकर किया करते थे, फिर जाके उमर करने लगे। और रोया करते थे दरियाए फरात के किनारे, कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर तुम मुझसे पूछे जाओगे? और उमर ने अपने दौर में कहत पड़ने पर हुक्मरान कोई ऐसा गैर मुस्लिम था उससे मदद तलब की। अल्लाह ने ख्वाब में एक बदरी सहाबी को दिखाया कि उमर को क्या हो गया। जब उमर तक बात पहुंची तो परेशान हो गए, मेरी गलती ढूंढो। का सलातुल इस्तस्का नहीं पड़ी और गैर मुस्लिम से मदद ले ली, ये गलती। अच्छा हाँ चलो बाहर। सब के साथ जाके खुले मैदान में नमाज इस्तस्का पढ़ी, अल्लाह ने बारिश की जलधल कर दी। तो उमर की बातें जो है वो मैं आप इस तरह नहीं समझ सकते, बहुत कुछ इनको अल्लाह ने दिया। और वाकई के फातेह फलस्तीन में फातेह बन कर गए बैतुल मकदस के। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी है आपको याद होगा यूशे बिन नून, मूसा के दौर में हुकूमत कौम ने इनकार किया, 40 साल वादी यती मेरे याद है सूरत बकरा सारी, 40 साल तक किधर है यती हो न फिल अर्दी, उधर ही रहे जहाँ सारा साल। मूसा अलैहि सलाम फौत हुए, उसके बाद यूशे बिन नून जो शागिर्द भी थे, बहनोई भी थे और उम्मती भी थे, उनकी मायत में यूथ सामने आ गई, यंग लोग आए और जाके बैतुल मकदस फतह किया। उस दिन से लेकर बैतुल मकदस यहूद के कब्जे में था। उमर पहला शख्स है कि जिसको चाबी मिली थी। फाते थे, 3 बड़े फाते लिख ले, यूशे बिन नून, उनके बाद उमर, और उमर के बाद, ये तो आपके करीब का दौर है, ये अब आप ढूंढिएगा। याद रखिए अच्छे लोगों की बातें ख़त्म नहीं होती, वक्त ख़त्म होता है। यहाँ रुकते हैं इंशाल्लाह, कल थोड़ी बात करके आगे चलेंगे। आज एक दुआ के साथ यहाँ से उठिएगा कि अल्लाह उमर जैसी जुरत दे, और सहाबे कराम के जो अख़लाक थे और जो उनकी खूबियाँ थी वो उस हम में और हमारी औलादों में डाल दें। आप देखिए कि ये वसफ़ आज चाहिए उम्मत मुस्लिमा को आगे लाने के लिए। बाकी दौलत, माल, हथियार, टेक्नोलॉजी, वो जो उतनी उनके पास थी उससे तो बहुत ज़्यादा हमारे पास है। उमर ने जो इतनी दुनिया में रूलरशिप की, आपको पता है किस उम्र का दौरा कितना था? कल कुछ चीज़ें इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे, उमर थे क्या क्या कुछ उनको मिला हुआ था। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह आपको ये इल्म मुबारक करे। अमल आपने खुद करना है, इल्म तो मिल जाएगा। अभी 2-3 मिनट है, लेकिन आपकी आज ब्रेक है, ब्रेक सेल है, आप उसको फोकस करें और नमाज भी अदा कीजिए। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कल। आज हमारा समय शुरू में काफ़ी टाइम चला गया कुछ टेक्निकल इश्यूज में, फिर भी हमने बहुत ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए दिल की गहराई से, स्माइली फेस दें। बाहर जाके इस कमरे से क्या कहेंगे एक दूसरे को? थके तो नहीं? और ब्रेक नहीं दी? गिला करना मेरे से कर लें, जो गलत चीज़ कहनी है मुझसे कह लें, आपस में नहीं करनी, ठीक है? जाइए, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वल्लाह ही आप मुझे इजाज़त दें, मैं दोबारा पढ़ाने को तैयार हूँ। करूँ शुरू? देखा, चलिए जाइए। अभी पूरे नहीं पढ़े ना आपने सहाबा के किस्से, तो इन